पहली बात आपको बताऊं कि हमारा ये दौरे कुरान बहुत सिंपल, बहुत इजी गोइंग होगा इंशाल्लाह। कोई इसमें फिकी बात नहीं होगी, कोई मसलक की बात नहीं होगी, कोई फिरका वारियत की बात नहीं होगी, क्योंकि ये सब तो मौजू ही नहीं है कुरान का। कुरान का मौजू अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ है। ये जो मसाइल हैं ये हदीस का मौजू है, फिक हदीस का मौजू है। तो आप पूरे शरह सदर के साथ इस दौरे कुरान को आगे भी भेज सकती हैं, किसी मसलक, किसी जमात, इवन नॉन मुस्लिम जो उर्दू समझते हैं आप उनको भी सुनवा सकते हैं। पूरे शऊर के साथ कहूँगी कि आपको इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी जिस पे आप शर्मिंदा हों। दूसरी बात है कि इस साल मैं दौरे कुरान रुकू वाइज करवाऊंगी। पिछले माशाल्लाह बैकवर्डली जाऊँ तो 5-6 तो मुझे भी याद है, 5-6 सालों के दौरे कुरान में मैंने आयतों के वो पेयर चूज़ किए थे जो एक मौजू की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कितने पेयर बन चुके हैं। पिछले साल दुआओं के एतबार से चूज़ किए, उससे पिछले साल दिल की असलाह थी, और उससे पीछे जो भी सारे थे। इस साल हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए रुकू का तर्जमा इकट्ठा पढ़ूंगी। एक तो इससे हम टाइम भी सेव करेंगे, दूसरा फिर रुकू वाइज आपको पॉइंट्स दूंगी। ये एक नई चीज़ होगी जिन लोगों ने पिछले कई साल हमारे साथ किए उनके लिए। दूसरी बात है कि मेरा अपना अंदाज रिमाइंडर्स का होगा, थिंग्स टू डू, अमल क्या करना है, नसीहत का होगा। इसमें बड़ा पार्ट इस दफा होगा तज़कीर बिल कुरान, फज़क्किर इन्ना ज़िक्रतन फ़िल मोमिनीन, नसीहत कीजिए, नसीहत तो ईमान वालों को फ़ायदा देती है। और इसी तरह से इसमें इंशाअल्लाह ताला हम हर रोज़ एक पारा अल्लाह की रहमत से किया करेंगे। अल्लाह ताला हमारा आज से ही ये गोल पूरा करवाए, और मकसद पारा पूरा भी नहीं करना, ना दौरे कुरान 30 पारों को पूरा करने का मकसद है। ये सब तो हो जाता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या आपका अमल पूरा हुआ? और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि हम लोगों ने इल्म और अमल का सफ़र साथ साथ किया। इल्म और अमल का सफ़र साथ साथ जब किया जाता है ना, तो उसमें टाइम चाहिए होता है। आप सबको कहूँगी कि अपने साथ एक छोटी सी बुक, रिमाइंडर बुक रखिए, जो बात आपको बीच में ऐसी लगे कि इट्स फॉर यू, या आपने इसको याद रखना है, जल्दी से उस पर एक छोटा सा हिंट दे दीजिए, बाद में जाके उसको पूरा कर लें। आपके सामने कोई भी मुसहफ खुला हो, नो प्रॉब्लम, आप उसको खोलें। स्क्रीन पे आपको यहाँ भी मिल रही हैं, ऑनलाइन पे जो देखेंगे उनको भी मिलेंगी। कोई तरीका ऐसा इख्तियार कीजिएगा जिसे आप 100% फोकस्ड हो, सोना नहीं है, सुस्त नहीं होना। अपने हाथ में कुरान, कागज़, पेंसिल हो तो ज़्यादा फोकस होता है। आप अपने मुसहफ पे देखिए, वो सबसे अच्छा रहेगा आपको इंशाल्लाह, अलर्ट होके बैठे। और इसी तरह से इस साल जो हमारा मेन थीम इसमें आएगा वो अजमत सहाबा है। हम इस साल के दौरे कुरान को देखेंगे कि आखिर ये सहाबा क्या चीज़ थे। तो अजमत सहाबा हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है कि आखिर अल्लाह ने सहाबा कराम को इतनी अजमत क्यों दी। क्या थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फारिगशुदा थे, कोई दुनिया के बहुत बड़े किसी ऊंचे मुकाम पे थे। अल्लाह इनको खैर उम्मत कहता है, कुंतुम खैर उम्मत इन, सूरत आले इमरान 110 में आता है, और अम्बिया और रुसल के बाद सबसे आला दर्जा इनका है। हमने 4 दिन का जादुल खैर किया है, नए लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, आपको इसी YouTube चैनल नूरुल कुरान टीवी, NURULQURAN और TV, और माई नूरुल कुरान फेसबुक का चैनल है हमारा। इसके अलावा वेबसाइट और ऐप्स पे भी आपको बाद में मिल जाएगा। आप इसमें से जादुल खैर नाम के 4 थंबनेल देखेंगे, अपनी सहूलत के मुताबिक अभी से थोड़ा थोड़ा करके घर में जाकर सुनना शुरू कर दें। हमने 4 दिन सहाबा पे ज़ेर हासिल बात की है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे कि सहाबा को, अस्हाबे रसूल को ये गैर मामूली अजमत क्यों मिली। ये कोई पुरस्कार करामत थी? कोई अल्लाह ने उनका कोई DNA मुख्तलिफ बनाया था? वो कोई रोबोटिक इंसान थे? नहीं, सहाबा ने उस चीज़ को परख लिया, सहाबा उस पैगाम को पा गए कि जिसको पाने वाला आज भी मिस्टीरियस हो जाता है। जैसे कल उनके पास था वैसे ही आज हमारे पास है। ठीक है, लामा इकबाल ने कह दिया कि ये गाजी ये तेरे बरसरार बंदे हैं, ये तो मानते हैं। हम पढ़ेंगे, इतने वाक़ सुनेंगे आप तारीख के हैरान होंगे। एवरी डे हम एक आर्टिकल तारीख का भी शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन ये याद रखिए कि ये बात पुरसरारियत आती कहाँ से है। सहाबा को जो असमत मिली वो उन्होंने अपने कौल और अमल से तारीख में ऐसी मिसालें कायम की जो किसी इंसानी गिरोह ने कायम नहीं की। इसीलिए भी पूरी इंसानियत में अंबिया और रुसुल के बाद सबसे टॉप मोस्ट जो मुकाम है वो असहाब का है। इनका सबसे पहला जो अनोखा कारनामा था वो क्या था, आज के इस पारे के साथ लेके चलूंगी। हम देखते हैं नेक्स्ट पे पारा अलिफ लाम मीम शुरू करेंगे, थोड़ा सा पारे का टॉपिक, हर पारे का डिफरेंट टॉपिक होगा और हर टॉपिक सहाबा की एक खूबी होगी। आपको मैं अगर चंद मिनट खामोश रहकर मौका दूं कि सहाबा की कुछ खूबियाँ तो नोट कीजिए, तो आप कहेंगे नमाज पढ़ते थे, तस्बीह नमाज पढ़ते थे, 500 दाने की तस्बीह थी, अल्लाहू का विर्द जपते थे, पुड़ियाँ बना बना के लोगों को खाने को फकियाँ देते थे मसरत के साथ। आज हमने कुछ ऐसा ही तसव्वुर बांध लिया, नहीं, सहाबा का सबसे पहला कारनामा। और इसी थीम पे अभी देखेंगे पूरे पारे में से आपको कितनी आयतें मिलेंगी, अभी नहीं बता रही, फिर टू मच हो जाता है। जहाँ आयत आएगी आपको बताऊंगी कि इनका और उनका फ़र्क देख लीजिए। तो सहाबा की पहली खूबी जो मुझे समझ आ सकी वो क्या थी कि पैगंबर को आगाज़े तारीख में पहचाना। आगाज़े तारीख में पैगंबर को पहचाना, ये क्या बात है, समझ नहीं आती, बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हैं हम लोग। तो याद रखिएगा कि जब कोई बहुत मशहूर हो जाता है, फेमस हो जाता है, उसका फेम होता है, तो लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं, उसे हाथ मिलाना चाहते हैं, ये आसान है। आज भी आप देखिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पर अपनी करोड़ों रहमतें करें, कितना प्यारा नाम लगता है, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह, इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, मैं दीनी नाम ले रही हूँ ना, आज तो हम उनके नामों पे लड़ने मरने को भी तैयार हैं। लेकिन आपको बताया कि इनमें से कोई एक इमाम भी ऐसा नहीं है कि जो सुख और चैन की ज़िंदगी बसर करके गया। अक्सर के जनाजे जेलों से उठे, मुखालफतें हुई और कोड़े पड़े, क्यों, लिखिए चंद बातें। अपने दौर की दीनी शख्सियत को मानना और बात है, और पिछले दौर की शख्सियत के गुण गाना ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। सहाबा की ये अनोखी सिफत थी कि उन्होंने अपने ही हम असर यानी सेम टाइम पीरियड में आए हुए रसूल को पहचाना, इनका साथ दिया। ये काम इतना मुश्किल है कि मालूम तारीख में गिरोही तौर पे या ओवरऑल ये सिर्फ एक ही दफ़ा वाक़या पेश आया, यानी पूरी जमात, पूरा क्राउड, पूरा गिरोह एक शख्स को नबी मान ले जिसके साथ कोई पंपन शो नहीं, कोई हटो बचो नहीं है, कभी नहीं। ये वाक़या हमें सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ हुआ। तारीख़ गवाह है कि हज़रत आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी रसूल आए सब का इनकार किया गया, मजाक उड़ाया गया। आज भी आप देखें तो बाइबल में कोटेशंस मौजूद हैं कि तुमने मेरे नबियों को नाचीज़ समझा। लोग वही को भी मानते हैं, रिसालत को भी मानते हैं, लेकिन वक्त के नबी को मानना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको मिसाल दूं, छोड़ें सबको, मैं और आप, हमारी नानी कितनी अच्छी थी, नानी ये खाती थी, ये नानी का प्याला है, ये नानी ने मुझे फलां वक्त पे ये चूड़ी दी थी, नानी नानी नानी। और आज के दौर में सोचते अभी दादी जिंदा हो उसकी रोक टोक अच्छी नहीं लगती, वो बूढ़ी बेचारी अकेली बैठी रहती है, हम उनको टाइम नहीं देते। माजी के बुजुर्गों के कसीदे करना बहुत बड़ी बात है, आज के दौर के नहीं। अपने माँ बाप क्यों बुरे लगते हैं, क्योंकि रोकते हैं टोकते हैं। आप अपने मौजूदा उस्ताद से फैस ना हासिल करें और माजी के उस्तादों के गुण गाएं, ये आपकी बदबख्ती होती है। बात समझ आ गई है, फितरत की बात है, एक वो जो बात है ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तो लोगों का अमूमन मुहसिनीन के साथ कुछ ऐसा ही रवैया होता है। मुहसिनों के साथ वो अमूमन यही करते हैं कि जब तक वो उनके बीच में मौजूद होते हैं वो उनसे फ़ायदा नहीं उठाते, उनको तकलीफ़ें देते हैं, हल्का जानते हैं, और जब वो चले जाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनको हीरो बना के तिल कर रसुल फद्दलना बादहुम अला बाद फिर झगड़े करते हैं। वो कहते हैं हम उनके नाम पे, हम उनके नाम पे। सहाबाए कराम ने जिस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद रसूलुल्लाह बनते देखा, उनको नहीं पता था कि ये शख्स कल दी हंड्रेड्स में नंबर वन पे आ जाएगा माइकल हार्ट के मुताबिक, उनको नहीं पता था द मैन हु शोक द अर्थ इस शख्स के नाम पे किताब लिखी जाएगी, उनको नहीं पता था कि कल यूरोप आपको माने ना माने, आपकी बातों पे अमल करे ना करे, बट इस पे मजबूर हो जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मैन ऑफ रेवोल्यूशन, ही वाज अ पैगंबर इनकलाब। लेकिन सहाबा ने उस वक्त माना। लोग नबियों के नाम पे इदारे कायम कर लेते हैं, बड़े बड़े जश्न मनाते हैं, पिछले नबियों के जन्मदिन मनाए जा सकते हैं, उनके बर्थडे मनाए जाते हैं, उनके विलादत के दिन मनाए जाते हैं, लेकिन सामने मौजूद नबी को लोगों ने नहीं माना। यहूदा, यहूद ने उनसे नस्बत तो जोड़ी, माना तो नहीं। और यहूद ने हज़रत ईसा का इनकार किया, हालांकि वो मूसा को मानते थे। नसारा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, हालांकि हज़रत मसीह की परस्तिश की हद तक इज्जत करते थे। इसी तरह देखिए कि कुरैश ने नबी सल्लम पे पत्थर मारे और आपको घर से निकाला, हालांकि हज़रत इब्राहिम के वारिस होने पे फ़ख्र करते थे। तो इसकी वजह क्या है? एक जुमला हल्का सा बोलती हूँ ताकि लिख लें कि कदीम नबी की नबूवत तारीखी रिवायात के नतीजे में साबित शुदा नबूवत बन जाती है। वो किसी कौम का कौमी असासा होते हैं, हेरिटेज, लोक विरसा उर्दू में आप बोलते हैं ना। किसी कौम में आने वाला नबी इसके बाद की नस्लों के लिए एक हीरो बन जाता है। और मजरत के साथ आज हम मुसलमान भी कमोबेश नबी सल्लम को एज अ हीरो मानते हैं। हीरो वर्शिप है। रबी अव्वल आएगा, मिलाद की महफिलें सजेंगी, पत्तियां फूल जड़े लगेंगी और रंग डाले जाएंगे और जश्न आमद रसूल होगा और नातें पढ़ी जाएंगी, लेकिन उसी नबी की सुन्नतों को हम ज़िबा करते हैं, उसी नबी के तौर तरीकों को हम पसंद नहीं करते। तो लिहाजा ये बात कि सहाबा को कैसे पता चल गया कि ये शख्स कल बहुत बड़ी शख्सियत बनेगा, ये थी उनकी खूबी। वक्त का जो नबी होता है ना, वो एक मुतनाज़े नबी होता है, पता नहीं ठीक है नहीं, पता नहीं गलत है नहीं। यहूद ने क्या कहा था? चलो देखते हैं ये कामयाब होता है कि नहीं, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। शक होता है, इल्तबास होता है, लेकिन जो सहाबाए कराम थे उन्होंने नबी सल्लम के किसी कारनामे को नहीं देखा। उन्होंने अल्लाह के नबी को उस वक़्त माना जब बदर की फतह नहीं थी, और उन्होंने उस वक़्त भी माना जब मक्का फतह नहीं हो चुका था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम का कदम ब कदम पे साथ दिया। ये इतनी बड़ी खूबी थी। और आज भी जो लोग उसी नक्शे कदम पे चलते हुए अल्लाह के नबी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, आपके इस दीन को आम करने के लिए साथ दे रहे हैं चीज़ों का, उनका इंशाल्लाह दर्जा सहाबे रसूल जैसा होगा, उनकी कोशिशों और उनके हालात के मुताबिक। और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? इसलिए कि वक्त के नबी का साथ देना, उसके लिए अपनी अना को दफन करना पड़ता है, और दूसरी बात यह कि उसके मिशन की राह में अपना माल खर्च करना पड़ता है। क्योंकि ये कैसे मिशन के रास्ते में माल खर्च करना होता है जिसका भी ये भी नहीं पता कि ये हक है कि नहीं। देखिए नई नई दुकान है, पता नहीं चलेगी कि नहीं, नया बिजनेस है, पता नहीं डूबी ना जाए, फ्लॉप ही ना हो जाए, कौन पैसा लगाए। हाँ, लोग शेयर्स किस में लेंगे जो कई कई साल के जमे हुए हैं? तो सहाबा ने डूबती कश्ती में पाँव रखा। अल्लाह के नबी पे तो जो जुल्म सितम मक्का वालों ने करने थे, सहाबा ने कोई तस्दीक भी नहीं की। और सहाबा कराम वो लोग थे कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को ऐसे माना जैसे कोई तारीखी रसूलों को मानता है। तो ये थी वो उनकी खूबी गज़वे खंदक में। हत्ता के ऐसे हालात बन गए थे कि सर्दी भी थी, गुर्बत भी थी, सब कुछ हांडियाँ उलट रही थी और ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं पूरी हो रही, कि एक मुसलमान नुमा शख्स की ज़ुबान से ये बात निकल गई थी कि मोहम्मद हमसे वादे तो बड़े करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हम कैसरो और किसरा के ख़जाने हासिल करेंगे, और आज हाल यह है कि एक शख्स बैतुल हलाम में नहीं जा पा रहा। काना मोहम्मद यईदुना, वादे करता था ना कुल कनूज किसरा व कैसर, और आज हाल यह है कि हम बाथरूम में नहीं जा सकते। तो ये जो बात थी ना, कि ये तो वक्ती बातें थी, ये तो बस ऐसे सियासी नारे हैं, आज वो सब हकीकत बन चुकी है। आज इस्लाम की बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है। सहाबा कराम ने ऐसी किसी चीज़ के बगैर आप पर एतबार किया, और ये थी वो खूबी। और ये आती कैसे, इसको इंशाल्लाह हम पारे के साथ जहाँ देखेंगे आपका भी दिल चाह रहा होगा। और हर पारे की एक शख्सियत बगैर किसी के कहे, जिसको कहते हैं कि विदाउट एनी सेकेंड थाट, आज के पारे की पर्सनैलिटी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, मैंने जिस पर भी हक का पैगाम पेश किया उसने कुछ पसो पेश तो किया, इफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। इधर मैंने उनको अल्लाह का पैगाम पेश किया और उधर उन्होंने दिल की गहराई से मान लिया। तो अबू बकर सिद्दीक बिल्कुल इब्तदाई मुसलमानों में से हैं। पांच गुलाम, दो औरतें और एक अबू बकर के सिवा उस वक़्त तक कोई मुस्लिम नहीं था जब हज़रत अबू बकर मुसलमान हुए। ये सही बुखारी की रिवायत है 3660। मैं फिगर्स के साथ फैक्ट्स क्यों देती हूँ कि शायद बाद में भी सुन के आप नोट कर लें। लेकिन अबू बकर के फजाइल मैं जो बोल रही हूँ हदीस से बोलूँगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैंने किसी को दोस्त बनाना होता तो मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाता। ये सही बुखारी की रिवायत है 3656 और मुस्लिम 6176 और 6173। लेकिन आपने फरमाया कि मेरा खलील तो अल्लाह है। फिर इसी तरह से आपने एक मौके पे क्या कहा, मैं और मेरा माल सब आप ही का तो है। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे किसी के माल से इतना नफ़ा नहीं पहुंचा जितना अबू बकर के माल से। और मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ कि इस्लाम की जड़ों में अबू बकर और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल लगा हुआ है। खुशकिस्मत है आप अगर आपको उस वक्त माल लगाना पड़ रहा है जिस वक्त कोई नहीं लगाने वाला। बाद में तो लोग माल लेके फिरते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं रहती। शुरू में तो कोई आपको जानता भी नहीं है। तो अबू बकर का माल, तो जब अबू बकर ने इतनी बड़ी बात सुनी तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं और मेरा माल सब आप ही का तो है। ए अल्लाह के रसूल, फबका अबू बकर वकाल या रसूल अल्लाह हल अना व माली इल्ला लक, मेरा माल आपके सिवा किसी और का भी है। ये इब्ने मजा की रिवायत है 94। और अबू बकर की खूबी सानी स्नैन, दो में से दूसरा। ये वाक्य हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत अनफाल में। हिजरत की राहें हैं और वहाँ इंशाल्लाह आपको मिलेगा कि गार में जब नबी सल्लम की जान की कीमत लगी हुई थी उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे। ये वाक्य हम उनके आयतों के साथ पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको चंद रेफरेंस दे रही हूँ कि अबू बकर हिजरत के सफ़र पर निकलने की इजाज़त मिलकर रो पड़े। क्या आपकी बेटी कहती हैं कि अगर मैंने उस दिन अपने बाप को रोते ना देखा होता तो मैं मानती भी ना कि कभी कोई खुशी से भी रो सकता है। कैसे साए की तरह अल्लाह के नबी के साथ थे। और ये रिवायत है बुखारी की 3652 में। हत्ता के गार में एक ऐसा वक्त भी आ गया था कि अगर दुश्मन अपने कदमों की तरफ देखते तो उनको अल्लाह के नबी और अबू बकर दिख जाते। ये बुखारी की रिवायत 3653 और मुस्लिम 6169। और अल्लाह के नबी का ये प्यारा सहाबी, इसके लिए एक और खूबी है और वो क्या है कि हज़रत अनस से रिवायत है कि अल्लाह के नबी से पूछा गया आपको कौन शख्स ज़्यादा प्यारा है। आपने फरमाया आयशा। लोगों ने अर्ज़ की मर्दों में से। फरमाया इनके बाप यानी अबू बकर। इब्ने माजा की रिवायत है 101, तो सबसे ज़्यादा बिलविड ऑफ प्रॉफिट। माशाल्लाह क्या उनकी खूबियाँ थी। और इसी तरह के वाक़यात हमें और भी जगह मिलते हैं बुखारी और मुस्लिम में कि अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिया। और एक और अल्लाह के नबी का खिराज तहसीन अबू बकर के लिए, मैं हर एक एहसान का बदला चुका चुका सिवाय अबू बकर के एहसान के। ये रिवायत अगर आपने पढ़नी हो तो तिरमिज़ी में 3661 पे है। अबू हुरैरा ही की रिवायत है। आपने फरमाया कि मैं अबू बकर के एहसानात का बदला नहीं दे सका। यानी ये एक आपकी खूबसूरती थी। फिर अबू बकर के लिए अल्लाह के नबी का एक जुमला, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सरदार हैं। हज़रत अली से ये रिवायत अल्लाह के नबी की हमें मिली कि अबू बकर और उमर दोनों जन्नत के उधेड़ उम्र लोगों के सरदार हैं, ख्वा अगले हों या पिछले, अम्बिया और मुरसलीन के सिवा। और ये जब तक ज़िंदा रहेंगे अली इनको इसकी खबर ना देना। ये इब्ने माजा 95, तिरमिज़ी 3666 और 3665 में रिवायत आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। एक और रिवायत है हज़रत खुज़ैफ़ा से, अल्लाह के नबी ने फरमाया नीचे दर्जे वाले बुलंद दर्जे वाले लोगों को जन्नत में ऐसे देखेंगे जैसे चमकता हुआ सितारा आसमान के किनारे में दिखाई देता है। और अबू बकर और उमर इन्हीं बुलंद दर्जे वालों में हैं। और क्या खूब रहे दोनों, यानी वो अबू बकर और उमर जन्नत में चमक रहे होंगे जैसे आसमान पे सितारे चमकते हैं। ये भी इब्ने माजा की रिवायत है 96 और तिरमिज़ी में 3658। और अल्लाह के नबी ने एक मौके पे अबू बकर और उमर दोनों को देखकर फरमाया ये दोनों कान और आंखें हैं। तिरमिज़ी की रिवायत 3671। और एक दाएं और एक बाएं थे आपके अक्सर औकात में, जब भी आप जाते तो एक दाएं और एक बाएं। आपने फरमाया कि हम इसी तरह कियामत के दिन भी उठाए जाएंगे। इब्ने माजा की रिवायत 99 है। रिवायतें तो और भी बहुत सारी हैं लेकिन मैं बस आपको इतनी सी बात कह दूं कि ये सब अचानक नहीं हुआ, इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट। ये अल्लाह को गलती नहीं लगी। लोग कुछ कर पाते हैं तभी होता है। इंशाल्लाह अबू बकर सिद्दीक के बारे में कुछ चीज़ें जो बीच में आती जाएंगी बताती जाऊंगी। अब हम चलते हैं अपने पारे के ऊपर और इंशाल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ करके इस पारे को लेंगे। हर पारे के साथ आपको एक दुआ भी मिला करेगी जो कि आपके मेरे फ़ायदे की भी है और हम उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और दूसरी ये बात है कि आज सहाबा का मौजू ये था ना कि उन्होंने अल्लाह के नबी को पहचान लिया। आज बहुत सारे लोग हक को नहीं पहचान सकते, बहुत सारी चीज़ों से मरूब हो जाते हैं, लेकिन हक चूंकि इतना चमकता दमकता नहीं होता तो नहीं जानते। तो आज से एक दुआ आप और मैं भी सीखेंगे, और ये दुआ क्या है कि अल्लाहुम्मा अरिना लशिया कमा हिया। ए अल्लाह हमें चीज़ों की असल दिखा। देखिए आज धोखों का दौर है और बहुत प्लॉटिंग हो रही है, और ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल का दौर है। दीन और दुनिया दोनों में लोग बड़ी लुब्रिकेटिंग बातें करते हैं, पता ही नहीं चलता हक क्या बातिल क्या है। फलां बात बड़ी अच्छी करता है, फलां प्यार से बड़े बोलता है, फलां मीठा बोलता है, फलां के दर्स में मज़ा बड़ा आता है, फलां जो है वो बहुत गा गा के दुआ कराते हैं। कभी इन बातों के शहर में ना आइए, हक सुनिए। लुकनत वाली ज़ुबान से भी जो हक को बोलता है उसकी ज़ुबान में तासीर होती है। तो ये दुआ आपकी मेरी है, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि आज सोशल मीडिया पे हर वक्त ही तो इधर से उधर की उधर की इधर की चीज़ें जा रही हैं, सेहत का ख्याल रखे बगैर। अहादीस हैं भी नहीं, सिर्फ कॉल हैं या पता नहीं क्या है, और न जाने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें पेश की जाती हैं। तो आज मैं और आप अपने लिए जो दुआ चूज़ करेंगे कि अल्लाह जैसे तूने सहाबा किराम के दिल खोल दिए थे ना, नबी सल्लम को पहचान गए थे, हमें भी सही बंदे तक ले जाए, हम भी उसकी बात सुने जिससे हमारा ये आखरत बन जाए, और हमें हकीकत के साथ चीज़ें दिखा, ना कि अंदर खाता कुछ और। वो कहते हैं ना, नक्कालों से होशियार रहिए। तो दुआ का अगला हिस्सा क्या है, वरिनल बातिला बातिलम वरजुकना इज्तना बहू वरिनल हक का हक्कम वरजुकना तिबा अहू। ए अल्लाह हमें चीज़ों की असल दिखाते रहिए जैसे वो हैं, और बातिल को बातिल की सूरत में दिखा, और इससे बचने की तौफीक दे, और हमें हक को हक की सूरत में दिखा, और इसकी पैरवी करने की तौफीक दे। आप दीन और दुनिया दोनों के नाते से ये मांगिए, लोग आपको धोखा ना दें, और सबसे बदतरीन धोखा वो होगा जो कोई आपको मुझे दीन के नाम पे दे दे। अल्लाह ताला हमें आंखें खोल कर दीन को लेने और देने वाला बनाए। चॉइस बहुत है हमारे पास, कभी अच्छी बुरी कभी नहीं फ़र्क होता, ज़्यादा अच्छी और कम अच्छी कभी होता है। हम बाज़ दफ़ा इतने केयरलेसली जस्ट लाइक टिश्यू पेपर की तरह, नो थैंक्स आई डोंट नीड इट, नो आई हैव दिस, मेरे पास ये है। तो अल्लाह से कि अल्लाह में वो हक सुना जो मेरा दिल बदल दे, और अल्लाह हमारे दिलों को बदल दे।